नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। खुद को पहचानने की इस जद्दोजहद में कई मुकाम हमने तय किए हैं। एक बात जो सामने आई है वो ये कि जिस तरह की जिंदगी आज के इस भागते दौड़ते युग में हम जी रहे हैं, उसमें कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियां हमने खुद ही जनरेट कर ली हैं। सॉल्यूशंस भी हमें खुद ही तलाशने पड़ेंगे। ऐसे में एक बीमारी जिससे हम में से हर एक को दो चार होना पड़ता है कभी न कभी, वो है डिप्रेशन। क्या है एग्जैक्टली डिप्रेशन, ये हम अच्छी तरह से जान गए हैं और ये भी जान गए हैं कि डिप्रेशन को दूर करना हमारे अपने ही बस में भी है, लेकिन कई बार हमें प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है। किस तरह के डिप्रेशन आ सकते हैं हमारी जिंदगी में और कौन सा वो वक्त होता है, कौन सा वो मुकाम होता है जब हमें एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम।
और
नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
ओम शांति।
ओम शांति सिस्टर शिवानी। आज पहले आपसे शुरू करते हैं कि डिप्रेशन के हर एस्पेक्ट को हमने जाना है अच्छी तरह से कि डिप्रेशन क्या है, जिंदगी के किस फेज में हमें समझ में आ जाता है कि डिप्रेशन है। यहाँ पे जब थोड़ी थोड़ी देर खुशी, थोड़ी थोड़ी देर गम होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि हम डिप्रेशन की स्थिति में जा रहे हैं। जो जर्नी, हम इंटरनल जर्नी की बात करते आ रहे हैं पूरी इस श्रृंखला में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में, उसमें एक एस्पेक्ट तो ये आता है कि खुद के बारे में अवेयर होके हम ये जान लें कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो हमें परेशान करते हैं और हमें उनसे दूर होना है। जो डिप्रेशन है, जो कभी कभी गम तक हम पहुंचते हैं, कुछ देर का गम हमें आता है, उसमें क्या ऐसी बातें खुद से करनी है हमें, जो खुद स्व काउंसलिंग की बात करते हैं, अपने आप से बात करने के बाद सेल्फ काउंसलिंग की बात करते हैं, कि हम उस वो चार घंटे के वक्फे को निकाल पाएं और वो जो चार घंटे खुशी के आएंगे वो ज्यादा बेहतर हो।
सेल्फ काउंसलिंग अर्थात अपनी, जब हम पहचान लेते हैं कि कौन सी बात है जो उस चीज को ट्रिगर कर रही है, तो हम उसका सोल्यूशन, जैसे दूसरों को सोल्यूशन देते हैं वैसे खुद को सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात कि मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनको पहचानना, मेरे अंदर कौन सी शक्तियां हैं उनको पहचानना। ज्यादातर क्या होता है, हम सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं परिस्थिति को सामना करने की शक्ति नहीं है, या किसी ने कुछ कह दिया या मेरे जीवन में कोई घटना घटी, मुझे मेरे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, मेरे अंदर एक राइट डिसीजन लेने की पावर नहीं है। तो ये जो सारी पावर्स हैं ये हम फील करते हैं कि हमारे अंदर नहीं है और वो खालीपन आना शुरू कर देते हैं। राजयोग जब हम करना शुरू करते हैं तो ये पावर्स एक नेचुरल रूप में इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी पावर्स हमारे अंदर हैं। You know, they don't have to be brought from anywhere outside. सहन शक्ति है, सिर्फ कभी कभी वो हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो उसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे उसको यूज करते जाएंगे वो और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कोई भी परिस्थिति और कोई भी व्यक्ति मेरी मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता।
लेकिन वही आपने कहा कि सेल्फ काउंसलिंग जो
है, तो जैसे ही अगर सपोज आपसे मेरी कोई बात हुई और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, अब मेरी वो गम वाले फेज में मैं चली गई क्योंकि आपने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरी, जो हमने कहा कि जो मेरी अपनी बनाई हुई इमेज है उसको हर्ट हुआ। देखो हर्ट हम कब होते हैं, मैंने अपने बारे में एक पर्टिकुलर इमेज बनाई है, आपने कुछ ऐसे कह दिया जो वो इमेज मेरी बनाई हुई इमेज के साथ मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए आपके बोल मुझे तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें अब सेल्फ काउंसलिंग यही होगी कि सबसे पहले तो मेरी मन की स्थिति का मास्टर मैं खुद हूं। अगर मैंने अपनी कोई इमेज बनाई है तो अच्छी इमेज अगर बनाई है तो सबसे बड़ी पावर तो यह है कि नोबडी कैन कंट्रोल मी। दूसरा, अपने आप से ये बात करना शुरू करें कि असलियत क्या है, जो मैंने सोचा या जो आप कह रहे हैं, यू नो। एंड सेकेंड, ट्राई एंड टॉक टू माई सेल्फ के ओके, दिस इज वॉट यू फील, मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर नॉट, ईदर वेज लेट मी चेक माई सेल्फ। अगर आप सही हैं तो मैं अपने आप को उस अनुसार चेंज कर लूं, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपने जो कहा है
उसका कोई मायने नहीं,
कोई मायने नहीं।
और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही भी हैं तो आप अपने आप, मैं अपने आप को मार नहीं दूंगा, हाँ, कि मैं चेंज कर सकता
हूं। बिल्कुल, तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम, हमारे को प्रॉब्लम उस बात से नहीं होती है, हमें प्रॉब्लम ये ज्यादा होती है उन्होंने ऐसा क्यों कहा,
मेरी इमेज जो मैंने बनाई हुई थी
उससे वो, तो वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ जाता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा, और वो चीज हम बार बार अपने आप को फिर कहते रहते हैं, तो ये फिर हम उस टाइम परेशानी के पीरियड में गुजर रहे हैं, तो उस टाइम कोई और मदद नहीं कर सकेगा। आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ, उनकी जो राय थी वो उन्होंने कही, अब मुझे उसको अपने इमेज के साथ
पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब हम इस एस्पेक्ट पे हैं कि जब मैं उस डिप्रेशन के फेज में जा रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए भी, क्या ये सेल्फ काउंसलिंग डज इट रियली हेल्प?
इट रियली हेल्प।
क्या हम बात कर सकते हैं, उस फेज में होते हैं कि हम बात कर पाए?
हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे ही पता है कि मुझे कौन सी बात दर्द कर रही है।
शिवानी बेन ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, विच इज अदरवाइज सेड, सभी को याद रखनी चाहिए बात, कहते नो बडी कैन मेक यू डिप्रेस्ड विदाउट योर परमिशन।
We gave him the permission.
तो उन्होंने बात की ना सारे पावर्स के, उसमें सबसे बड़ा है पावर ऑफ साइलेंस। यू शुड लर्न टू गो इन साइलेंस। साइलेंस में गए तो ऑटोमेटिक परखने की शक्ति आएगी,
खुद से बात करने का,
सहन करने की शक्ति आएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी।
तो अब डॉक्टर साहब, हम उस बात पर आते हैं कि ये तो बात है कि जब मैं उस फेज में आ गया कि मैं उतनी देर के लिए तकलीफ में हूं, दुख में हूं, खुद से काउंसलिंग, खुद से बातचीत करके कहीं ना कहीं उस एहसास को मैं हटा सकता हूं। अब बात करते हैं जो इससे परे जा चुके हैं, यू नो, हम थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं कि डिप्रेशन जो है वो सीप इन कर गया है। आपने पिछली बार हमने बताया था कई तरह के होते हैं डिप्रेशन, आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि क्या, कौन कौन सी वो तरीके, कौन कौन से वो डिप्रेशन कहे जाते हैं जिनके कारण शायद अलग अलग होते होंगे और उनके सिम्टम्स शायद अलग अलग होते हों, तो किस तरह के डिप्रेशन?
कई प्रकार से डिप्रेशन को डिवाइड करते हैं। एक तो जिसको कहा गया रिएक्टिव डिप्रेशन, मतलब कोई ना कोई परिस्थिति आती है उसके रिएक्शन में आप डिप्रेस्ड होते हैं, कभी बिजनेस में लॉस हो गया तो डिप्रेस्ड हुए, किसका देहांत हो गया तो
डेथ इज अ मेजर थिंग।
फिर दूसरा एक है जिसको कहा एंडोजिनस डिप्रेशन। एंडोजिनस डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा ही डीप होता है, जो केमिकल्स के कारण है कि कोई बाह्य परिस्थिति ऐसी नहीं परंतु फिर भी अचानक व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है, दैट इज एंडोजिनस डिप्रेशन। और एक है प्रकार जिसको कहा साइकोटिक डिप्रेशन, विच इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। इसमें व्यक्ति पागल जैसी हरकतें भी कर सकता है, वो डिप्रेस्ड है लेकिन साथ साथ में साइकोसिस भी है उसे।
अच्छा, तो सारे जो डिप्रेशन हैं वो साइकेट्रिक नहीं होते हैं?
नहीं, साइकेट्रिक होंगे लेकिन साइकोसिस जिसको कहा, जैसे साइकेट्री में दो प्रकार की बीमारियां, एक तो न्यूरोसिस और दूसरी है साइकोसिस।
ओके,
न्यूरोसिस ऐसी बीमारियां जो माइल्ड फॉर्म ऑफ बीमारी भी कहेंगे, व्यक्ति खुद रियलाइज करता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साइकोसिस ऐसी बीमारियां हैं जहां पेशेंट स्वीकार ही नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी है,
एहसास ही नहीं होता।
हाँ, वो तो कहेगा आप सब पागल है, तुम ट्रीटमेंट कराओ। इवन डॉक्टर के पास भी जाके पूछेंगे ना क्या तकलीफ, तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं, इनको प्रॉब्लम है ना, उनका इलाज करो आप। तो जो डीप, जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन है साइकोटिक डिप्रेशन,
जो कि वायलेंट भी हो सकता है, हमने पिछली बार बात की थी, या फिर सुसाइडिकल भी जा सकते हैं।
सुसाइडल तो रिएक्टिव डिप्रेशन में भी पॉसिबल है, लेकिन साइकोटिक डिप्रेशन में पागल जैसी हरकतें करेगा।
इन तीन को आप, हमने डिफाइन किया, आपने बताया हमें कि किस तरह के जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, जो डिप्रेशन है। एक मैं यहां से बात आपसे, एक्चुअली हमारे बहुत सारे दर्शक हैं सिस्टर शिवानी, आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे कि आज जब भी हम किसी मानसिक परेशानी की बात करते हैं, मानसिक बीमारी की बात करते हैं, इनफैक्ट आजकल तो इतनी ज्यादा उसके ऊपर बातचीत की जाती है, चाहे वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, पहली चीज हर बीमारी का नाम डिप्रेशन दे दिया जाता है। व्हाई? सो लाइक, क्या हर जो मानसिक परेशानी है वो डिप्रेशन से उपजी है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कॉमनेस्ट है इसके लिए डिप्रेशन का, बिकॉज डिप्रेशन इज सो कॉमन, और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि फोबिया आज बहुत बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चीजों का लोगों को डर लगता है, पानी का डर लगता है, घर से बाहर जाने का डर लगता है, फोबिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे और एक बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सन, कि एक चीज व्यक्ति बार बार करता है, ने 100 बार हाथ धुलाई करेगा,
वो अपना वो देखेंगे कि ताला लगाया कि नहीं, बार बार देखते हैं वो।
कई बार कुछ रिचुअल्स भी होते हैं, डॉक्टर मेरे पास आए थे कि भी चौराहे पे और ऐसे स्पेसिफिक उसकी विधि, तो चक्कर नहीं लगाएंगे तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं, वो आगे बढ़ेंगे नहीं। कहते क्लिनिक में जाने को मुझे 3 घंटे लग जाते, एक बार ये ऑब्सेशन बुद्धि में आ गया फिर मैं आगे बढ़ता ही नहीं। ऐसी एंग्जाइटी एक बहुत बड़ी और बीमारी है, जो डिप्रेशन से बिल्कुल भिन्न है, उसके ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। और जो है वो है साइकोटिक बीमारियां, कि जिसमें सिजोफ्रेनिया हो गया, ऐसी और एक है मैनिक डिप्रेशन।
तो ये इट मीन्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिप्रेशन.
दे आर नॉट पार्ट ऑफ
डिप्रेशन. कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर होल ट्रीटमेंट या पूरा प्रोसेस, बट दे आर नॉट डिप्रेशन.
या तो ऐसा कहेंगे कि भी और बीमारियों के साथ साथ भी डिप्रेशन हो सकता है. परंतु ये सब डिफरेंट एंटिटीज है कि जिनका हम इलाज, जैसे मैनिक डिप्रेशन कहा, वो अलग प्रकार की बीमारी है जहां कुछ समय तो व्यक्ति एक्साइटमेंट में जाता है, एक दिन, पांच दिन, एक मास, और फिर कुछ समय वो डिप्रेशन में जाएगा. ये साइकिल उसका चलता रहेगा. उस समय बहुत खर्चा करेगा, बहुत बातें करेगा, गुस्सा भी कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, फिर कभी ना कभी उसे डिप्रेशन भी आता है. थोड़ा समय वो उसकी भी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है. इसके कारण प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, तब ठीक से इलाज हो सकता है.
तो यहाँ तो अभी हम तीन तरह के जो डिप्रेशन की आपने बात की, रिएक्टिव डिप्रेशन और आपने
एंडोजेनस
डिप्रेशन,
साइकोटिक डिप्रेशन.
एंडोजेनस डिप्रेशन में क्या था? रिएक्टिव तो ये था कि किसी उसका रिएक्शन कर रहे हैं.
एंडोजेनस डिप्रेशन में केमिकल का
चेंजेस जो है,
जीन्स के कारण हो सकता है, और भी कोई कारण पॉसिबल है कि बाहरी कोई परिस्थिति नहीं. व्यक्ति भी कहता है कि भी मुझे कोई ऐसे विचार भी नहीं आए, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मैं डिप्रेस्ड हो गया. वह संभव है कि उसे वह एंडोजेनस डिप्रेशन हो.
एंड देन थर्ड इज
साइकोटिक
डिप्रेशन,
जिसमें पागलपन भी है डिप्रेशन,
उसमें मेजर कहीं ना कहीं साइकियाट्रिक प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है. कैन वी help these kind of, when we've talked about real three depressions, major depressions, jinme kahin na kahin chemical changes bhi hain, kya hum self counseling ya jo pura process,
dono aspects sath sath chalenge na, medication, psychotherapy jo kar rahe hain and meditation
khud apne aap
aisa kahenge. First two hai, self counseling can help reactive depression mein bhi ho, endogenous depression mein bhi hoga,
lekin
psychotic depression mein nahi hoga. Even main to kehta hu psychotic depression mein meditation nahi sikhana chahiye. Bhale unko help hoti hai, aisi bhi research studies hui hai ki psychotic depression mein bhi meditation madad karta hai, lekin fir bhi main hamesha kehta hu ki nahi sikhaiye. Kyon? Kyunki samjho ki aap koi Brahma Kumaris ke center pe gaye, aapko psychotic depression hai, to behno ko to pata nahi hai pura kya hai, तो इसलिए वो तो मेडिटेशन ही सिखाएंगे. कभी ये बढ़ भी सकता है. इसमें ये भी होता है कि वो जो डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस है, वह जो व्यक्ति सिखा रहा है उसके प्रति हो जाए.
हाँ.
कि नहीं, यही मुझे परेशान कर रहा है,
जो सिज़ोफ्रेनिया
क्या ब्रह्मा कुमारी सारे मेरे पीछे लगे हैं. ऐसे भी लोग तो सच मान लेते हैं कि भी सचमुच ऐसा हुआ होगा. हाँ. बट लेकिन उसका वह डिल्यूजन है.
बिल्कुल.
ये भी हो सकता है कि मैं कृष्णा हूँ, मैं भगवान हूँ. तो इसके कारण ये जो इस प्रकार का साइकोटिक डिप्रेशन, उसमें मेडिटेशन नहीं सिखाना चाहिए.
डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने बात की थी जो मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, यू नो, जो लक्षण दिखने लगते हैं, तो कुछ फिजिकल लक्षण भी होते हैं जब डिप्रेशन हो रहा होता है?
नहीं नहीं, बिल्कुल. बहुत अच्छा ये प्रश्न है और ये जानना चाहिए सचमुच. ये तकलीफ भी हो रही है क्योंकि फैमिली फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग हैं उसमें भी 30-40% को डिप्रेशन है. इवन एमडी फिजिशियन के पास जो जाने वाले लोग हैं, कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और कहीं ना कहीं तकलीफ है, लेकिन एक्चुअली उन्हें डिप्रेशन है. स्टडी भी हुई है, प्रॉपर कहीं टेस्ट आती है साइकोलॉजी में, जैसे क्रोशाक टेस्ट है, 16PF की, ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट्स है जिसके द्वारा हम पिन पॉइंट कर सकते हैं. जैसे ब्लड टेस्ट होती है, ऐसे ही ये साइकोलॉजिकल टूल्स है. वह जो फिजिशियन के पास जा रहे थे लोग, उन लोगों को ये साइकोलॉजिकल टूल्स दिए गए और पता चला कि बड़ी संख्या में 25-30% पेशेंट्स हु आर विजिटिंग अ एमडी फिजिशियन आर एक्चुअली डिप्रेस्ड.
ओहो, तो मतलब ये फिजिकल एलिमेंट्स की जो बात कर रहे हैं आप, दे कैन बी ड्यू टू डिप्रेशन,
दे आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन. नहीं, वो डिप्रेशन का एक पार्ट है.
ओके.
उन्हें वो फिजिकल सिम्टम्स भी हो रहे, भी पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और कोई तकलीफ है, लेकिन साथ साथ में डिप्रेशन भी है.
तो अगर
जो फिजिशियन को समझ में नहीं आता है,
डिप्रेशन दूर कर पाएंगे तो क्या वो
सिम्टम्स, वो भी ठीक हो जाए. हाँ, अगर डिप्रेशन आपने दूर कर दिया तो वह जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, या तो उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी रिलीफ कर देंगे.
हाँ, तो फिर सबसे पहली चीज यही है कि सेल्फ रियलाइजेशन की डिप्रेशन है.
नहीं, बीच में कोई अगर कि आया था कि बहुत सारे स्कूल के बच्चों को
पेट में दर्द
होने लगा है, और उसमें अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारे डायग्नोस भी कराए, लेकिन कुछ फिजिकल एलिमेंट ही नहीं निकलते, लेकिन फिर भी वो दर्द नहीं ठीक हो रहा. तो देन इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. लेकिन हम लोग दूसरे एस्पेक्ट पर इतना ध्यान देते हैं ना, एक्सटर्नल, तो इंटरनल एस्पेक्ट पर न ध्यान देने के कारण उसको जड़ से उस प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर पाते.
फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल डिजीज आर इंटरलिंक्ड. जैसे ना हाइपोथायरॉयडिज्म एक तकलीफ है जिसमें थायराइड का लेवल कम है, इट कैन बी लिंक विद डिप्रेशन. इधर वे इज पॉसिबल.
डिप्रेशन कैन लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म.
हाइपोथायरॉयडिज्म ऑल्सो कैन कॉज डिप्रेसिव सिम्टम्स
बिकॉज इट विल बी सेकंड वन जो केमिकल चेंज हो रहा है.
हाँ, केमिकल ये इवन हाइपोथायरॉयड के सिम्टम्स भी ऐसे ही है. लैक ऑफ एनर्जी, कुछ कम करने का नहीं होगा मन, इवन रिफ्लेक्सेस आर वेरी स्लो. तो वो दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हो सकती.
आपने कहा कि जो पहले दो तरह के जैसे रिएक्टिव डिप्रेशन और जो दूसरे डिप्रेशन की आपने बात की जैसे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम सेल्फ काउंसलिंग से दूर कर सकते हैं. क्योंकि हमारा अल्टीमेटली एम जब हम उसकी तरफ पहुंचते हैं, जब भी इस कार्यक्रम में भी बात कर रहे हैं, कि मकसद हमारा यही है कि हम सॉल्यूशंस जरूर तलाशें. और सॉल्यूशंस अगर हम खुद की पहचान के दौरान ही तलाश लें जो सफर पे हम हैं, तो क्या है वो सॉल्यूशंस
जो सेल्फ काउंसिलिंग के सोल्यूशन. एक तो कि भी सेल्फ काउंसिलिंग से या तो कहेंगे कि मेडिटेशन से आप अपने आप को सही रूप से पहचान पाते, अपने सिम्टम्स को जो है. तो अधिकतर व्यक्ति अपने सिम्टम्स को ही पहचान नहीं पाता है. और अगर आप अपने सिम्टम्स को ठीक से पहचानने लगे तो थोड़ा भी डिप्रेशन शुरू होगा पता चल जाएगा, और फिर उसके लिए कोई कदम उठाना भी संभव है. आमतौर पर जब काफी डिप्रेशन बढ़ जाए तभी व्यक्ति को पता चलता है.
कॉन्स्टेंटली उस स्टेट में रह पाना सिस्टर शिवानी कि कुछ देर के लिए तो मैं खुद से बातचीत करके अपने आप को उस स्टेट से बाहर ला सकती हूँ, लेकिन कई बार फिर ये लगने लग जाता है कि क्या मैं झूठ तो, मतलब मैं क्या जिंदगी जी रही हूँ. ये बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल अब मन में आता है जब वेन यू बीन टॉकिंग अबाउट कि अपने आप से बात की जाए, सेल्फ काउंसलिंग की बात की जाए. कई बार क्योंकि सब चीजें बेमानी लग रही होती है तो खुद से बात करना भी बेमानी लगता है कि क्या कर रही हूं मैं, क्या चीज है. लेकिन कितनी देर तक वो उस स्टेट में रह सकते हैं, क्योंकि हर लम्हा हर क्षण उस स्टेट में रह पाना, जैसे हमने पहले बात की थी, दैट इज द यू नो द बेस्ट. लेकिन वो नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा. अब ये भी कंडीशनिंग हो सकती है, लेकिन वो रह नहीं पा रहे हैं अभी आज के इस वक्त में नहीं है. तो कैसे हम अपने आप को हर पल समझा सकते हैं?
हर पल समझाना नहीं पड़ेगा एक्चुअली. ये सिर्फ एक शुरू में थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है. जैसे आज नेगेटिव सोचना या परेशान रहना ये बहुत नेचुरल हो गया है, उसी तरह खुश रहना बहुत नेचुरल होगा. इट्स नॉट दैट लाइफ लॉन्ग आप ये करते रहेंगे कि बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा. कुछ एक दिन के लिए या कुछ एक मास के लिए कहें, ये एक जर्नी पे आप चलते हैं जहां परिस्थिति आती है, आप परेशान होते हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को उससे निकालते हैं. 2, 4, 8, 10 बार आप जब इस तरह से करते जाएंगे, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी. आप अपसेट होंगे, तुरंत आप कहेंगे नो, इट्स इन माय कंट्रोल, चलो 5 मिनट्स एंड बैक. सो द टाइम ड्यूरेशन की हम कितनी देर वो डाउन,
4 घंटे के बजाय हम
इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग. पहले वो 4 घंटे था, अब वो थोड़ा और कम होता जाएगा. एंड धीरे धीरे वी विल रीच अ स्टेज, कुछ बात आई, आप अपसेट हुए, क्विक आप वापस आ जाएंगे. धीरे धीरे स्टेज आएगी कि आप अपसेट नहीं होंगे.
राज्यों में जो मेरा अपना अनुभव है कि इसमें स्पेशल बहुत बैठने की आवश्यकता नहीं है. कई बार और जो टेक्निक्स होती है जिसमें आपको स्पेशली बैठना पड़ता है, 20 मिनट ध्यान किया फिर शांत लगने लगा, राज्यों की विधि ऐसी है कि आप चलते फिरते भी कर सकते. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, परंतु भी मैंने ऐसे इंटरव्यू तो ढेर सारी दी है, नॉलेज इज देयर, मुझे भी सोचने की आवश्यकता नहीं है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. तो जब आपसे बात कर रहा हूं तभी मैं ये अवेयरनेस ला सकता हूं कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम पीसफुल और मैं आपको अपने विचार बता रहा हूं. तो देन इवन व्हाइल टॉकिंग आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेज. मैं तो यहां तक कहता हूं ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं आप मेडिटेटिव स्टेज में हो सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं वो स्टेज आपकी बन सकती है. तो शिवानी बेन ने बिल्कुल राइट कहा कि वो जो रूट जब स्टार्ट हो रहा है देयर इटसेल्फ यू कैन कट इट ऑफ.
तो ये हमने पहले भी बात ये की थी कि ये जो पूरा अवेयरनेस है ये हम आज इतनी देर बाद आकर हम जानने की कोशिश करते हैं. द जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम एट अ वेरी यंग स्टेज यू नो, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट फेज ऑफ क्वेश्चनिंग यू नो, नॉट रियलाइजिंग. अगर वो 5वीं का बच्चा या 6वीं का बच्चा भी काउंसलर के पास जा रहा है, अगर ये अवेयरनेस उसके पास ही आ जाए वहां से, तो ये कितना जरूरी है, कहां कैसे किया जा सकता है?
जितना आजकल जैसे स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, लेकिन काउंसलर्स भी यही ध्यान रखें कि वो उस इंडिविजुअल को, उस बच्चे को इनर पर लेकर जाएं, यू नो, वो भी कहीं सोल्यूशन आउटर ही ना देना शुरू कर दें कि ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इस तरह से बिहेव करो. नॉर्मली हम जो चेंज लाने की कोशिश करते हैं वो बिहेवियरल लेवल पर बहुत ज्यादा होता है. आप इस तरह नहीं, आप अपने व्यवहार को परिवर्तन करो, सोच को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहेवियरल चेंज बहुत टेम्पररी होता है. फिर कोई और थोड़ी बड़ी परिस्थिति आ गई, अगेन द बिहेवियर विल चेंज. तो बिहेवियर विल कीप चेंजिंग, वो फ्लक्चुएशन से गुजरता ही जाएगा. लेकिन अगर एक परमानेंट बिहेवियर में चेंज लाना है तो द सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी द थॉट लेवल चेंज, जिससे एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा. फिर कोई भी बात आपको उस तरह के बिहेवियर पर लेकर नहीं जाएगी. सो द काउंसलर हैज टू टेक केयर कि यू आर चेंजिंग द एंटायर वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, नॉट जस्ट द बिहेवियर.
एंड दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट.
दैट्स व्हाई आई थिंक स्टिल लाइक द बीए तो कहते हैं पांचवी, मैं तो समझता हूँ पेरेंट्स आर बेस्ट काउंसिलर. और बच्चा दो साल का है ना तब ही स्टार्ट हो. इट्स नॉट एक्चुअल काउंसिलिंग. कहा गया बच्चों को देखा है कि भी बच्चे है ना टीचिंग से नहीं सीखते. दे डोंट डू वॉट यू से, दे डू वॉट यू डू. एक बार मैं भी अपनी एनालिसिस कर रहा था कि ऐसे स्पिरिचुअल कैसे बने, नो व्हाट हैपेंड इन लाइफ. लाइक माय पेरेंट्स वर नॉट सो स्पिरिचुअल, फिर भी ये कैसे बात आई. तो जब सोचते तो मुझे पता चला कि भी जब हम छोटे थे तो मेरे नाना, हम गांव जाते थे, गुजरात में एक छोटा सा गांव है, वैकेशन में दो ढाई मास जाते थे. और मेरे जो नाना थे वो दो तीन घंटे तक कुछ पूजा पाठ अपना करते थे. हम लोग भी साथ में बैठ करके एवरीथिंग वी यूज टू डू. एंड आई थॉट दैट मस्ट बी द सीड
समवेयर डीप विद इन
रहा होगा सीड सचमुच की, जो आगे चल करके वो सचमुच फुल ब्लोन फेज में आया. तो पेरेंट्स को भी यही करना है.
बिल्कुल.
गलती ये करते हैं, हमारे पास भी कहीं आते कि बच्चों को ले जाओ सेंटर पे, हमको नहीं आना है.
And unless you do, children will never practice that. And it won't have its effect also. Because then you are creating a wrong thought pattern. तो अगर आप बच्चों को right thought pattern create, you know, सिखा भी रहे हैं, unless आप खुद practice कर रहे हैं, वो जो संस्कार हैं वो चेंज नहीं होंगे.
Unless until you realize it, अब वो बच्चा तो फिर अपनी सही बात बोले लगेगा.
Actually बहुत ज्यादा बच्चे का thought pattern हम ही बनाते हैं. You know, even ये कहना वहां मत जाना, वहां भूत है, ये fear create करना, ये हमने ही तो create किया. बच्चा चल रहा है इतना छोटा सा, उसको टेबल लग गई. अब बच्चे को समझाने की बजाय कि आपकी गलती थी, हम टेबल को मार देते. दिस इज ब्लेम कल्चर. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर टॉट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज द टेबल्स फॉल्ट. तो वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लेकिन ये सारे थॉट पैटर्न्स हम छोटे से उनके अंदर डाल रहे हैं. इंस्टेड यू नो राइट सोर्स, क्योंकि ईजी वे आउट, बजाय को समझाना कि बाहर अंधेरा है या क्या, नहीं बाहर भूत है, बाहर मत जाना. तो इजी वे आउट विल नॉट वर्क.
भूत आ जाएगा, यू नो सो जाओ. और इस तरह से सुलाने के लिए
तो ये
फियर पी लो, ये इस तरह से. यस डेफिनेटली,
ये सारी छोटी छोटी चीजें जो लॉन्ग टर्म में हमारे थॉट पैटर्न को फिर डिटर्मिन कर देंगे.
हाँ, और कहीं ना कहीं जब फिर वो जो अचीवमेंट की बात है, एक अगेन अनदर टाइप ऑफ डिप्रेशन. एक्चुअली अभी तो हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी. अचीवर्स जो अचीव करने की एक लालसा कि मुझे वहीं पहुंचना है और नहीं पहुंच पाते, वो जो डिप्रेशन है, चाहे वो पीयर प्रेशर से है, जो सुसाइड इतनी ज्यादा रिजल्ट्स को लेके होती हैं कि मेरे में कैपेसिटी है या नहीं, मुझ में क्षमता है या नहीं, लेकिन अचीव वो करना है, वो जो मेजर डिप्रेशन जिसे आज का यूथ जो है वो बहुत ज्यादा रूबरू हो रहा है. अगली बार हम पूरे, हमारे पास बहुत से ईमेल्स भी आए हैं शिवानी, उन पे बात करेंगे. और ये कि वो अचीव अगर नहीं कर पाए तो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है. डॉक्टर गिरीश पटेल, आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए, थैंक यू सो मच. एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन आज की पूरी बातचीत में जो बात सामने आई वो ये कि डिप्रेशन के कई फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं. तो जरूरत ये है कि ना सिर्फ हमारे मन में क्या चल रहा है, बल्कि हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमारे फिजिकल सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, क्या हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए. और वहीं एक पॉज लेकर, एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से बात करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, तुझे क्या चाहिए जिंदगी. ये हर बार हम कहते हैं, तो उस जिंदगी को तलाशना है, अपने अंदर की इस जर्नी, इस सफर को तय करना है और ये जानना है कि किस तरह से एक बेहतर ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बाहरी जिंदगी को भी हम जी पाएंगे. आपके पास भी जरूर कोई ना कोई सवाल होगा तो आपका स्वागत है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 866-555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो आप अचीव करना चाहते हैं, अगर उस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, कोई वजह ऐसी हो जाती है, तब अगर डिप्रेशन आ जाता है तो उससे कैसे उबरा जा सकता है। तो फिर अगली कड़ी में होगी मुलाकात। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।